दिन भर तारीख 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। कोलंबिया के राष्ट्रपति सांतोस को मिला फार्क के साथ शांति प्रयासों के लिए नोबेल सम्मान।
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016.
हैती में 300 जाने लेने के बाद मैथ्यू तूफान अब फ्लोरिडा के लिए बना खतरा। राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान पर बवाल, कांग्रेस और बीजेपी दोनों हुई आक्रामक। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर सुनेंगे विवेचना, क्यों किया उन्होंने बीजेपी से समझौता।
ये जो आरोप लगाया जाता है कांशीराम पे कि वो भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, दरअसल उन्होंने भाजपा के साथ जितने बार हाथ मिलाया उतने ही बार भाजपा कमजोर हुई।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मैनुएल सांतोस को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार फार्क विद्रोहियों के साथ समझौता कर 5 दशकों से जारी गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। पुरस्कार को संघर्ष में मारे गए लोगों के परिजनों को समर्पित करते हुए सांतोस ने कहा कि इससे शांति प्रक्रिया मजबूत करने में मदद मिलेगी। पिछले रविवार को हुए एक जनमत संग्रह में कोलंबिया के लोगों ने फार्क विद्रोहियों के साथ हुए समझौते को बेहद कम अंतर से नकार दिया था। वहीं नोबेल समिति का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि शांति प्रक्रिया का अंत हो गया है। टिमोशेंको के नाम से चर्चित फार्क विद्रोही नेता को पुरस्कार में शामिल नहीं किया गया है। टिमोशेंको ने कहा है कि मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सामाजिक न्याय के साथ शांति चाहता हूँ। हेती में तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान मैथ्यू अब दक्षिण पूर्वी अमरीका की ओर बढ़ रहा है। अभी ये तूफान अमरीकी तट से नहीं टकराया है और फ्लोरिडा तट से कुछ किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना में आपातकाल लगा दिया गया है। डर है कि यहाँ तटीय इलाकों में रहने वाले लोग बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। तटीय इलाकों से 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। वहीं तूफान के कारण हेती में भारी तबाही हुई है और 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। बचाव कर्मियों ने मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जाहिर की है। भारत का कहना है कि वो पाकिस्तान से लगी अपनी सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह सील कर देगा। पाकिस्तान से लगी सीमा वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा,
मॉनिटरिंग पर हम लोगों ने विशेष बल दिया है क्योंकि हम दिसंबर 2018 तक के बॉर्डर के सील करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। इस समय इंडो पाक के बीच टेंशन बढ़ा है और वैसी सूरत में सब समस्त देशवासियों को एकजुट होकर जो भी हमारे सेना के जवान अथवा सुरक्षा के जवान जो कर रहे हैं उस पर भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए।
रूस का कहना है कि वो सीरिया के एलेपो शहर में हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की नई योजना का समर्थन करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के दूत इस्ताफा डे मिस्तूरा ने अलनुसर के लड़ाकों से पीछे हटने की अपील की है। मिस्तूरा को उम्मीद है कि अलकायदा से जुड़े जिहादियों के इलाका छोड़ने से रूस समर्थक सीरिया सरकार पूर्वी एलेपो में हमले रोक देगी, जहाँ बड़ी तादाद में नागरिक फंसे हुए हैं। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि वो इस विचार का समर्थन करते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में सुना, कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मैनुएल सांतोस को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे में अवार्ड ज्यूरी ने फार्क विद्रोहियों के साथ किए गए शांति समझौते के लिए उनके प्रयासों की तारीफ की। स्वीडन के ओस्लो में नोबेल पुरस्कार समिति की अध्यक्षा कासी कूलमन ने कहा, उन्होंने कहा कि नोबेल समिति ने 2016 का शांति नोबेल पुरस्कार कोलंबिया के राष्ट्रपति सांतोस को देश के 50 साल से ज्यादा पुराने गृह युद्ध को खत्म करने के लिए उनकी जो कोशिशें थी उसके लिए दिया गया।
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize.
नोबेल पुरस्कार समिति की अध्यक्षा कह रही थी कि इस युद्ध में कम से कम 2,60,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और 60 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। सांतोस को नोबेल पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया और वो कौन है, सुनिए अमर शर्मा से।
मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने कार्यकाल के आखिरी लम्हे तक शांति के लिए कोशिश करता रहूंगा। ये शब्द हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सांतोस के, जब कोलंबिया की जनता ने जनमत संग्रह में वामपंथी फार्क विद्रोहियों के साथ हुए शांति समझौते को खारिज कर दिया था। इसे कुछ दिनों पहले ही 27 सितंबर को कोलंबिया के कार्टिजेना शहर में कोलंबिया की सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत हुए। इस मौके पर उत्सव गीत गाए गए और इसे बहुत धूमधाम से मनाया गया। कोलंबिया की धरती पर राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सांतोस और तिमानशेको के नाम से मशहूर फार्क विद्रोही नेता ने पहली बार हाथ मिलाया था। दुनिया भर के नेता इस मौके के गवाह बनने के लिए कार्टिजेना पहुंचे थे। फार्क विद्रोहियों और कोलंबिया सरकार के बीच 52 साल तक चले गृह युद्ध में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 60 लाख लोग विस्थापित हुए। क्यूबा की राजधानी हवाना में 4 सालों तक दोनों पक्षों के बीच चली वार्ता के बाद बीते महीने स्थायी शांति के लिए समझौता हुआ था। इस समझौते में सांतोस के साथ साथ फार्क नेता तिमानशेको का भी अहम योगदान रहा। हालांकि बाद में कोलंबिया की जनता ने जनमत संग्रह में बेहद कम अंतर से इस समझौते को नकार दिया था, लेकिन सांतोस ने इसके बाद भी विद्रोहियों से वार्ता जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। आलोचकों का कहना है कि समझौते में विद्रोहियों को ज्यादा ही छूट दी गई थी। लंदन में कोलंबिया के राजदूत नेस्तर ओसोरियो लोंदोनो ने बीबीसी को बताया कि ये पुरस्कार शांति की कोशिशों के लिए राष्ट्रपति सांतोस को प्रोत्साहित करेंगे।
शांति के लिए उनकी अथक एकाग्रता और सतत कोशिश के लिए ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में वे 25 सालों या उससे ज्यादा समय से सोच रहे थे।
लेकिन सांतोस हमेशा से ही इतने आशावादी नहीं रहे हैं। एक दशक से भी कम समय पहले जब वे कोलंबिया के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने पड़ोसी देश इक्वाडोर में फार्क विद्रोहियों के कैंप में विवादास्पद बमबारी के आदेश जारी किए थे और इस कार्रवाई से पहले उन्होंने पड़ोसी देश को सूचित भी नहीं किया था। सांतोस पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो यूरिबे के करीबी हैं और उनका राजनीतिक उदय तेजी से हुआ है। 2006 में राष्ट्रपति यूरिबे फार्क विद्रोहियों से लड़ाई जारी रखने के वादे पर दोबारा चुने गए थे। कैबिनेट में फेरबदल करते हुए यूरिबे ने सांतोस को अपना रक्षा मंत्री बनाया था। रक्षा मंत्री बनने के बाद सांतोस ने कई बड़े सैन्य अभियानों से अपनी पहचान बनाई। 2008 में हुए हमलों के बाद इक्वाडोर और कोलंबिया के बीच राजनयिक तनाव पैदा हो गए। इसी दौरान कोलंबिया की सेना के आम नागरिकों को विद्रोही बताकर मारने के सबूत भी सामने आए। बावजूद इसके सांतोस की स्वीकार्यता बनी रही और वो 2009 में फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए। सांतोस 2010 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जीत गए।
कोलंबिया के राष्ट्रपति सांतोस को मिला शांति का नोबेल सम्मान। हैती में तबाही मचाने वाला मैथ्यू तूफान अब अमेरिका के तटीय इलाकों के लिए खतरा बन गया है। फ्लोरिडा समेत अमेरिका के 3 अन्य प्रांतों में आपातकाल घोषित किया गया है। फ्लोरिडा के गवर्नर का कहना है कि तूफान विनाशकारी साबित हो सकता है। फ्लोरिडा राज्य में 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं हैती में शक्तिशाली तूफान मैथ्यू की चपेट में आकर मरने वालों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा विनीत खरे से।
समुद्री तूफान मैथ्यू के कारण हैती में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राहत कर्मियों का कहना है कि दूर दराज की बसावट में पहुंचने के बाद कई और लोगों की मौत की जानकारी मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हैती में करीब 3.5 लाख लोगों को मदद की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की प्रवक्ता कॉर्नेलिया वॉल्थर ने हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में बीबीसी को बताया कि पीने के लिए साफ पानी अभी प्राथमिकता है।
Major preoccupation, the question of clean water to prevent epidemics, because children are extremely vulnerable.
हमारे लिए ये एक बड़ी व्यस्तता है। महामारी रोकने के लिए साफ पानी का सवाल है, क्योंकि बच्चे अभी बेहद कमजोर हैं। तूफान मैथ्यू ने बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया है।
तूफान मैथ्यू ने कैरेबियन क्षेत्र में काफी तबाही मचाई, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हैती में हुआ है। सहायता देने वाली एजेंसियों का कहना है कि प्रायद्वीप का सबसे अहम शहर जर्मी पूरी तरह से तबाह हो गया है और उसके 80% घर ढह गए हैं। दक्षिणी सूबे सूद में 30,000 घर तहस नहस हो गए हैं। हैती, क्यूबा, बहामा में तबाही के बाद अब ये तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना की ओर बढ़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की क्लेयर नेलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे तूफान को लेकर निश्चिंत नहीं हो जाएं।
The very dangerous thing about this hurricane is that according to the current tracks, it's not...
ताज़ा जानकारियों के मुताबिक इस तूफान के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन से सीधे नहीं टकराएगा और इसके बाद चला जाएगा, बल्कि यह कई दिनों तक समुद्र तट पर ही मंडराता रहेगा। इसका मतलब है कि यह बेहद शक्तिशाली तूफान के कारण बहुत भारी वर्षा होगी, जिससे बाढ़ की संभावना है।
हालांकि अभी ये जानकारी भी पुख्ता नहीं है कि तूफान जमीन से सीधे तौर पर नहीं टकराएगा। तूफान मैथ्यू ने हैती में इस कदर नुकसान किया है कि वहां राष्ट्रपति चुनाव तक स्थगित करने पड़े हैं। हैती के पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक में भी 4 लोगों की मौत की खबर है। बहामा में राजधानी नसाओ में बहुत नुकसान हुआ है। वहीं हैती के दक्षिणी पश्चिम इलाकों से संपर्क कट चुका है। हैती से मिली ताज़ा तस्वीरों में जबरदस्त नुकसान देखा जा सकता है। कैरेबियाई देशों में पिछले दशक में आए तूफानों में मैथ्यू सबसे शक्तिशाली है।
हैती में 300 जाने लेने के बाद मैथ्यू तूफान अब फ्लोरिडा के लिए खतरा बन चुका है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। रुख भारत का करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जवानों के खून के पीछे छिपकर दलाली कर रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार करके मोर्चा खोल दिया है। एक दूसरे के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस ने पलटवार किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक अब किस तरह से सियासी बिसात में बदल गई है, सुनिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में।
एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर शुरुआती खामोशी के बाद अब भारत के राजनीतिक दल ही एक दूसरे के निशाने पर हैं। नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान के बाद शुक्रवार दिन भर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे। शुरुआती डंका भारतीय जनता पार्टी ने बजाया। अभी तक मामले पर कम सक्रिय दिखे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राहुल गांधी पर तरह तरह के व्यंग कसे।
राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिससे उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता के सामने है। ये बड़े बड़े मसलों पर उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए।
अमित शाह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी पर एतराज हो, लेकिन ये बयान सभी सीमाओं को लांघ गया है। उन्होंने कहा कि वो दुख के साथ कहना चाहते हैं कि देश के जवानों ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया, लेकिन कुछ पार्टियों ने इस पर सवाल उठाए और ये बहुत अफसोसजनक है।
और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। कभी मौत के सौदागर, कभी जहर की खेती, कभी खून की दलाली, ये सारे शब्द प्रयोग करने से आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते।
इस तरह के तीखे बयानों के बाद खुद कांग्रेस पार्टी भी कहां चुप बैठने वाली थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को तर्कसंगत बताने मीडिया के सामने पहुंचे। रणदीप सुरजेवाला के बगल में बैठे कपिल सिब्बल ने अमित शाह के लिए कहा कि जिन्होंने जेल की हवा खाई हो वो क्या बताएंगे कि राहुल गांधी के मूल में खोट है। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी को अपना महिमा मंडन करने वाले पोस्टर लगाने बंद कर देने चाहिए, अगर तारीफ करनी है तो सेना की तारीफ करें। कपिल सिब्बल,
आज शायद ये हमले होते ही नहीं अगर जैश ए मोहम्मद पैदा नहीं होती। और जैश ए मोहम्मद को पैदा किसने किया? भाजपा ने। मसूद अजहर को रिहा किसने किया? भाजपा ने। मसूद अजहर को प्लेन में कौन लेकर गया? इनके डिफेंस मिनिस्टर।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर हो रहे विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कूद चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल का बयान गलत है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने ही मोदी सरकार से अप्रत्यक्ष रूप से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत भी मांगा था। बहरहाल, भाजपा की तरफ से कांग्रेस की प्रेस वार्ता खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मैदान में कूद पड़े। राहुल के विवादास्पद कहे जा रहे बयान पर रविशंकर ने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी का बचाव करके कांग्रेस आखिर देश को क्या संदेश देना चाहती है।
और जिस तरह का अगर राहुल गांधी की टिप्पणियां शर्मिंदगी थी, तो कांग्रेस के आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्मिंदगी की पराकाष्ठा था। मौत के सौदागर की सीख आज तक नहीं मिली है क्या?
तो एक तरफ जहां भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर दम भर रहे हैं, उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव बहुत सोचे समझे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल अपनी बात ठीक ढंग से नहीं रख पाए। बस, नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
और अब वक्त है आज की विवेचना का। भीमराव अंबेडकर के बाद कांशीराम को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हो या दलितों को भारतीय राजनीति के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा करना हो या फिर सिर्फ अपने बूते भारतीय राजनीति की पूरी इबारत को बदल देना हो, कांशीराम के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। कांशीराम की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
अभिमान कांशीराम ने बहुजनों को दे दिया, जनों को दे दिया सम्मान कांसी।
ये हैं अनंतराव अकेला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांशीराम और उनकी विचारधारा की सेवा में बिता दिया। कांशीराम का सबसे बड़ा योगदान था दलित समाज को एक राजनीतिक समाज में बदलना, जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने दलितों की राजनीतिक सत्ता पाने की चाहत को न सिर्फ हवा दी बल्कि करके भी दिखाया कि ऐसा संभव है। प्रोफेसर बद्री नारायण जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में प्रोफेसर हैं और उन्होंने कांशीराम की जीवनी लिखी है।
उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोगों को जोड़ते थे, उनका था बहुत व्यक्तिगत ताप से संबंध बना लेते थे। वो ऐसा नहीं कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, सोशल इश्यूज पे, सामाजिक मुद्दों पे, पावर, स्टेट, पॉलिटिक्स, सोसाइटी की इतनी गहरी समझदारी उनकी बातों में उभरती थी। जैसे एक बार कोई मिलने गया उनसे, उन्होंने कहा कि भाई आपसे फलाने मिलना चाहते हैं वो लीडर, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊँ, उसे मिलना है तो मेरे पास आए। तो उनको ये समझदारी थी कि हु एम आई, बिकॉज आई एम लीडर ऑफ द दलित कम्युनिटी, जो यहाँ की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। नरसिम्हा राव को आना है तो हमारे पास आए, हम क्यों जाएंगे नरसिम्हा राव से मिलने। ये ठसक नहीं थी उनमें, ये नहीं था वो आपसे मिलने चले जाएंगे, किसी गरीब गुरबा से मिलने गाँव गाँव में चले जाएंगे, लेकिन किसी बड़े नेता से अगर मिलना हो तो उनको तुरंत अपनी जो दलित शक्ति की गरिमा है वो उनको एहसास हो जाती थी।
कांशीराम ने पहले 1973 में बामसेव की स्थापना की, जिसके पीछे उनके एक सहयोगी के साथ हुई एक घटना ने बड़ा योगदान दिया।
पहले कांशीराम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, वो एक एम्प्लॉई थे, लेकिन वहाँ पर एक राजस्थान के दलित कर्मचारी थे, वहाँ काम करते थे, उनको एक छुट्टी जो कैंसिल कर दिया ना फूले के नाम पर, तो उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उसके लिए उनको निकाल दिया गया जॉब से। तो कांशीराम ने उनकी लड़ाई लड़ी, उनके लिए लीगल सपोर्ट, उनके लिए चंदा करना, उनके साथ वो लड़ने लगे और तब रिस्टोर किया उस छुट्टी को। फिर बाद में वो छुट्टी लौटाई गई, वो छुट्टी होती है अभी भी उस डिपार्टमेंट में। तो वहाँ से उनकी पॉलिटिक्स शुरू होती है। तब उनको लगा कि अरे जब ये कर्मचारी हमारे जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमें हक नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बामसिफ के संगठन को वहाँ पर पुणे से ही वीव करना शुरू किया। और वो साइकिल से चल चल के लोगों से मिलने जाते थे, कई बार साइकिल में हवा भराने का पैसा नहीं होता था तो वो पैसा कोई दूसरा बामसिफ का साथी उनको देता था या कई होटल वाला दे दे, तो ऐसे कर करके कई बार साइकिल चोरी हो गई, बैठ के बतिया रहे हैं, अच्छा बतियाते बहुत थे वो, मतलब वेरी गुड टॉकर। ट्रेन में चलते थे, थर्ड क्लास में चलते थे, कई बार टिकट होते थे कई बार नहीं होते थे, किसी तरह से वो जा करके घूम घूम करके, और अपने अपने साथ एक बक्सा रखते थे, वो टीन का बक्सा होता था छोटा, उस बक्सा में कुछ किताबें होती थी जो अंबेडकर और दलित आंदोलन पर छोटी छोटी बुकलेट्स, वो उसके बड़े वो प्रशंसक थे, कहते थे कि इन्हीं साहित्य से मैं बना हूँ ये जो छोटे छोटे बुकलेट्स।
दलितों के साथ हुई किसी जाति को वो शुरू से ही बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। कांशीराम पर एक किताब लिखने वाले SS गौतम उनके शुरुआती दिनों की एक घटना बताते हैं।
एक बार कांशीराम रोपड़ के एक ढाबे में गए, वहां उन्होंने खाना खा रहे कुछ जमींदारों को जोर जोर से शेखी बघारते हुए सुना कि किस तरह उन्होंने खेतों में काम कर रहे दलितों को सबक सिखाने के लिए उनकी पिटाई की। ये सुनते ही कांशीराम का खून खौल उठा और वो इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने एक कुर्सी उठाई और उससे जमींदारों को पीटने लगे। इस चक्कर में कई मेजें पलट गईं और उन पर रखी सभी प्लेटें चकनाचूर हो गईं।
कांशीराम का मानना था कि दलित और दूसरी पिछड़ी जातियों की संख्या भारत की जनसंख्या की 85% है, लेकिन उन पर 15% सवर्ण जातियां शासन कर रही हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी तो बना डाली, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज कर पाना इतना आसान काम नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व नेता AR अकेला बताते हैं।
1985 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव BSP लड़ रही थी तो कांशीराम जी ने कहा था कि हम पहले इलेक्शन में हारेंगे, दूसरे इलेक्शन में हराएंगे और तीसरे इलेक्शन में जीतेंगे। जब वो सत्ता की बात कर रहे थे, हम इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं, तो हुक्मरान बनाने के लिए लोकतंत्र में जिसके वोट ज्यादा होते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, उनको हुक्मरान होना चाहिए, लेकिन ये देश में 15% लोग सवर्ण लोग 85 लोगों पर शासन कर रहे हैं, ऐसा उनका संबोधन हर सभा में तकरीबन होता था। और उन्होंने नारा लगाया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने एक नारा और लगाया था कि जो बहुजन की बात करेगा और वो दिल्ली से राज करेगा।
काशीराम की मायावती से पहली मुलाकात 1977 में हुई थी। उस समय वो सिर्फ 21 साल की थी और एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही थी और साथ ही IAS के लिए तैयारी भी कर रही थी।
दिल्ली में एक मीटिंग थी वल्लभभाई पटेल हाउस के आसपास किसी हॉल में, और उसमें मायावती बहुत ही फायरी स्पीच उनका उन्होंने सुना, तो मायावती से बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने अपने साथ एक और साथी को लेकर के मायावती के घर गए। जब पहुँचे तो मायावती के लिए तो बहुत बड़ी बात, उस समय भी कांसीराम का जो मूवमेंट शुरू के दिनों में था, तो उनके लिए तो था कि भाई तो कांसीराम आ गए, बहुत बड़ी बात थी। एकदम वो विचलित, साहब यहाँ बैठे कि साहब कहाँ बैठे, साहब क्या पिए, साहब क्या खाएं, लाइक दैट। उन्होंने पहले पूछा मायावती से कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो उन्होंने बोला हम IAS बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि IAS बन के क्या करोगी, कहा कि IAS बनेंगे तो लोगों का भला भी करेंगे, शासन भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ऐसा पद दे देंगे जिसमें बहुत सारे IAS तुम्हारे आसपास घूमेंगे, तुम एक नेता बनो, दलित समाज का काम करो, तब उसमें ज़्यादा तुम दलितों के लिए काम कर सकती हो। फिर तब तक पिता उनके आ गए, चाय उनको दिया गया, अच्छा चीनी वीनी पहले बहुत देते थे वो, और चीनी ले आओ तो और चीनी मायावती लाई और दिया गया उनको, पिया उन्होंने। फिर उसके बाद पिता से उन्होंने कहा कि बेटी को हमें दे दो, पिता ने सहमति नहीं दी, तो उन्होंने टाला बात को। और
लेकिन मायावती ने अपने पिता की बात नहीं मानी, यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में आकर रहने लगी।
मायावती परिवार से अलग हो के लड़के अलग हुई और पार्टी ऑफिस में जाके उनके बगल के कमरे में रहने लगी। मायावती ने उसका भी बहुत वर्णन किया है कि कैसे उस समय क्या हमारे स्ट्रगल्स थे, किस तरह से लोग सोचते थे, कैसे एक लड़की का रहना उस समय कितनी बड़ी बात होगी, घर छोड़ के जाना। वो किराए पे चाहती थी कि कमरा लेके रहें, लेकिन किराए का उतना पैसा नहीं था, तो पार्टी ऑफिस में रहना मजबूरी हुई उनके। बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी इन दोनों में, ये जो बिल्डअप हुआ, और उनको पता था ये पोटेंशियल की ये कहाँ जाएगी।
काशीराम ने 1988 में इलाहाबाद से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। वो जीते नहीं, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ 68,000 से अधिक वोट ले गए। लेकिन उनका राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जब उन्होंने 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अभय कुमार दुबे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में प्रोफेसर हैं और कांशीराम के राजनीतिक जीवन पर उनकी नजदीकी नजर रही है।
कांशीराम की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि उनके अपने जमाने में जब वो जीवित थे वो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठजोड़ था, जो कि उन्होंने 1993 में किया था। मुलायम सिंह के साथ जो उन्होंने गठजोड़ किया था, उस गठजोड़ के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव में हरा पाए, जबकि कोई कल्पना भी नहीं करता था कि भाजपा चुनाव में हारेगी बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में। मैं समझता हूँ वो उनका बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उसी उपलब्धि को धीरे धीरे करके उन्होंने बड़ी कुशलता से आगे बढ़ाया, और वही उपलब्धि बाद में विभिन्न घटनाक्रमों से गुजरती हुई और विकसित होती हुई 2007 की मायावती के पूर्ण बहुमत में निकली। आप देखिए मायावती का पूर्ण बहुमत भी कैसे बना, वो नहीं बन सकता था अगर बहुजन थीसिस उसके पीछे न होती, अगर मायावती को अति पिछड़ों ने वोट ना दिया होता, अगर मायावती को गरीब मुसलमानों ने वोट ना दिया होता, अगर मायावती को 100 दलित वोटों में से कम 80 दलितों ने अगर मायावती को वोट ना दिया होता, यानी एक दलित राजनीतिक समुदाय ना बना होता, और साथ में जब इतना ज़बरदस्त बहुजन समुदाय बन चुका था तो उसके दबाव में कुछ ऊंची जातियों ने भी मायावती को वोट दिया, क्योंकि वो भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे, और उसमें 17% ब्राह्मणों ने मायावती को वोट दिया। उससे ये साबित हुआ कि अगर मायावती को उनका बहुजन समाज अगर कायम रहे और दलित समाज पे उनकी पकड़ बनी रहे, तो ब्राह्मण और ऊंची जातियों का अगर थोड़ा सा वोट और उन्हें मिल जाए तो वो उत्तर प्रदेश में आसानी के साथ बहुमत बना सकती हैं।
बाद में इन्हीं कांशीराम ने बिना पलक झपकाए समाजवादी पार्टी की धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 बार साझा सरकार बनाई और कांग्रेस के साथ भी चुनावी गठबंधन किया। नतीजा ये हुआ कि उन पर अवसरवाद के आरोप लगे।
देखिए, जिसको हम लोग पेजोरेटिवली या नीची निगाह से हम लोग कहते हैं अवसरवाद, कांशीराम की निगाह में वो एक खूबी थी। कांशीराम गर्व से कहते थे कि हम अवसरवादी हैं। हम इसलिए अवसरवादी हैं कि हमें अवसर मिले ही नहीं है, हमें जो अवसर मिलेगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और आप ध्यान कीजिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कांशीराम से गठजोड़ करने के लिए मजबूर हुई और कांशीराम ने अपने गठजोड़ों के जरिए भाजपा को पराजित किया। देखिए, भाजपा के हमेशा ज्यादा विधायक होते थे और बसपा के पास कम विधायक होते थे, उसके बावजूद भी भाजपा को मानना पड़ता था कि बसपा का मुख्यमंत्री होगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि उस राजनीति में हमेशा ही कांशीराम का हाथ ऊपर रहता था। और 170 से ज्यादा विधायक लेके आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी होती थी उत्तर प्रदेश में, उसका हाथ नीचे रहता था। जब उन्होंने कांग्रेस से दलित वोट छीन लिए, तब कांशीराम ने एक विख्यात वाक्य कहा था कि अभी तक मैं कांग्रेस की तरफ ध्यान दे रहा था, अब वो नष्ट हो गई है, अब मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ ध्यान दे रहा हूं। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि ये जो आरोप लगाया जाता है कांशीराम पे कि वो भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, दरअसल उन्होंने भाजपा के साथ जितने बार हाथ मिलाया उतने ही बार भाजपा कमजोर हुई।
बहुजन आंदोलन को उस समय बहुत बड़ा धक्का लगा जब 2003 आते आते कांशीराम गंभीर रूप से बीमार हो गए। उस समय उनकी शिष्या मायावती ने उनका बहुत ख्याल रखा। हालांकि इस पर बहुत विवाद हुआ जब उन्होंने कांशीराम के परिवार वालों को उन्हें अपने यहाँ नहीं ले जाने दिया।
अंत उनका अच्छा नहीं हुआ, बहुत बीमार तो पहले ही हो गए थे। जो एक बार ट्रेन से जा रहे थे उस ट्रेन में ही अटैक हो गया उनको, ब्रेन हेमरेज हो गया। और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए तो उस समय एकदम स्मृति लोप हो चुका था, डिमेंशिया था, पहचानते नहीं थे लोगों को। एक्शन से जब बहुत आप उनको हिला के अगर कुछ बात कहें तब वो जा करके आँखों से उनके आंसू आने लगते थे। फिर वो मायावती अपने घर ले गई क्योंकि उनको लगा कि हॉस्पिटल में ठीक से केयर नहीं हो रहा है, वहाँ ज़्यादा केयर होगा। भाइयों ने उसका विरोध किया, मतलब उनका लास्ट जो दिन है अपने लिए दुखद रहा और वो एक बड़े डिस्प्यूट में फंस गए। मायावती वर्सेस उनका परिवार दोनों लड़ने लगे कि वो लोग अपने साथ ले जाना चाहते थे, ये अपने साथ रखना चाहती थी। उसको उन लोगों ने मीडिया में एक अलग तरह से प्रोजेक्ट किया, लेकिन मायावती ने बहुत, आप समझिए, उनकी सेविंग से लेकर के और उनका नहलाना, फिर उनका बाल झाड़ना, वो इस तरह से जैसे कोई अपने उसका सेवा करता है पिता का। लोग उसमें मिर्च मसाले देखते हैं, लेकिन मिर्च मसाले छोड़ के अगर आप उसके भाव पक्ष पर आए उस संबंध के, तो भाव पक्ष बहुत सबल था।
सामाजिक क्षेत्र में कांशीराम दलितों के लिए भले ही ज्यादा कुछ न कर पाए हों, लेकिन उनकी राजनीतिक इंजीनियरिंग का ही फल था कि दलितों ने पहली बार अकेले ही राजनीतिक सत्ता का स्वाद चखा।
हाथ जिनके कांपते थे और वोट करने के समय और रास्ते उनके किए, रास्ते उनके किए आसान कांशीराम ने।
रेहान फतल, बीबीसी दिल्ली।
कांशीराम पर ये विवेचना आपने सुनी और अब आपको बताते हैं कि कल बीबीसी इंडिया बोल का विषय क्या है।
बीबीसी इंडिया बोल।
पिछले दिनों भारत पाकिस्तान तनाव के चलते भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध। मुल्कों की दुश्मनी में क्या कलाकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए? क्या कला को भी राजनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए? इस शनिवार 8 अक्टूबर बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1802-7001 पर शाम 7:30 बजे।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
तूफान मैथ्यू के कारण हेती में मरने वालों की तादाद कम से कम 400 हो गई है। हेती में तबाही मचाने के बाद अब यह तूफान अमेरिका के तट के करीब पहुंच गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मैनुएल सांतोस को फार्क विद्रोहियों के साथ समझौते के प्रयासों के लिए इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत का कहना है कि वो पाकिस्तान से लगी अपनी सीमा पर दिसंबर 2018 तक पूरी तरह सील कर देगा। रूस का कहना है कि वो सीरिया के एलेप्पो शहर में हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की नई योजना का समर्थन करने के लिए तैयार है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र लेकर कार्यक्रम हम फिर उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार।